देव घर के अंदर दाखिल होता है और उसके साथ उसके आदमी भी घर के अंदर आते हैं, जिनके हाथों में उस समय आस्तिक था। वे आस्तिक को खींचते हुए लाते हैं और सोफे पर पटक देते हैं। आस्तिक का एक हाथ जमीन पर लटका हुआ था, इसकी आंखें बंद थीं और चेहरा हताशा में लिपटा हुआ था। मीरा ने इसे देखते हुए हैरानी से देर से कहा, देव, ये क्या है? तुमने इसे बुरी तरह से क्यों मारा है? मैंने हाथ भी नहीं लगाया इसे, मेरे आदमी ही उसे उलझ रहे थे और उन्होंने ही मार मारकर इसकी वो हालत कर दी कि वो बेहोश हो गया है। मानना पड़ेगा, बहुत जिद्दी है, मेरे आदमियों को धूल चटा दी है, लेकिन आखिरकार मेरे लोगों ने भी इसे अच्छा सबक सिखाया, देव ने एकदम से अपनी बंदूक को रुमाल से साफ करते हुए कहा। तो मीरा ने गुस्से में कहा, सबक सिखाया? तुम इसे सबक सिखाना चाहते हो? देखो देव, तुम्हारे लोगों ने इसकी ये हालत कर दी, बेचारा बेहोश पड़ा है। देव एकदम से मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, बेचारा, खबरदार जो इस कमीने को तुमने बेचारा कहने की गलती की। तो इसने तुम्हारे और अरुणिमा के ऊपर बंदूक तान रखी थी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी और मेरी बेटी को डराने की? तुम जानती हो ना, जब बात मेरे परिवार पर आती है तो मैं किसी को नहीं देखता। वो तो शुक्र करो कि मैंने इसकी जान नहीं ली, वरना इसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता था। मीरा ने गुस्से में देव को देखते हुए कहा, सच में, क्या तुमने इसे बस इसलिए मारा है क्योंकि इसने मुझे और हमारी बेटी को डराने की कोशिश की थी? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि वो अरुणिमा का हस्बैंड है? अपनी बकवास बंद करो मीरा, कुछ भी बोले जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जानती हो कि इसकी वजह अरुणिमा नहीं है, ये गलती किसी और ने भी की होती तो शायद उसे भी मैं इस वक्त जान से मार देता। इसे नहीं मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अरुणिमा का हस्बैंड है, बाकी इसके पीछे और कोई वजह नहीं है, तो फालतू में दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं। जब मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर वो डर देखा तो तुम्हें बता नहीं सकता उस समय मैं क्या सोच रहा था। आज तक मैंने शौर्य और अरुणिमा के ऊपर अपने काम का असर नहीं पड़ने दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हें दिए हुए एक वादे की वजह से। मेरे बच्चों को नहीं पता कि उनका बाप असल में क्या काम करता है, पर इस आदमी ने मेरे घर में घुसकर मेरे बच्चों को डराने की कोशिश की है, मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ देता मीरा? देव ने एकदम गुस्से में भड़कते हुए मीरा से कहा। तो मीरा ने उसके सीने पर हाथ रखा और इसे सहलाते हुए कहा, शांत रहो देव, शांत रहो, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि उसने जो किया वो गलत है, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि इसने जो किया इसकी वजह क्या है। तुमने सोचने की कोशिश की इसने ऐसा क्यों किया है? मुझे नहीं पता और मुझे नहीं जानना है, देव ने गुस्से में देखते हुए कहा। तो मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें जानना चाहिए, उसने ये सब अरुणिमा के लिए किया है। इसकी बीवी अरुणिमा, जो इस वक्त हमारे घर में है, वो बस इसे अपने साथ वापस ले जाना चाहता था क्योंकि वो अरुणिमा से प्यार करता है। पर देव ने सख्त आवाज में बोला, मुझे नहीं लगता कि अरुणिमा इससे प्यार करती है। इस जैसे इंसान से कोई कैसे प्यार कर सकता है? वो है ही नहीं किसी के प्यार के लायक, और अरुणिमा जैसी लड़की के लायक तो वो इंसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर अरुणिमा उसके साथ नहीं जाना चाहती है तो वो इसे अपने साथ नहीं ले जाएगा। अगर वो इतना ही अच्छा होता तो अरुणिमा इसे छोड़कर क्यों आती? तुमने देखा नहीं, उसने कहा था कि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। ये आदमी पैसे वाला है तो फिर क्यों इसकी बीवी सड़कों पर भटक रही थी? मीरा ने तुरंत इसे शांत करवाते हुए कहा, क्योंकि अरुणिमा के पास अपनी वजह है वो सब करने की। देखो देव, मुझे लगता है कि वो उसका और उसके पति का आपसी मामला है, हमें इन सब में नहीं बोलना चाहिए। तुमने इसे सजा दी क्योंकि उसने तुम्हारे परिवार पर गन उठाई थी, तुम्हारा सजा देना एक तरफ से सही था, लेकिन अब आगे तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगे। इसके आगे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है, यह अरुणिमा का और उसके पति का आपसी मामला है। अपने आप से कुछ भी कहकर तुम ना तो अरुणिमा को सजा दे सकते हो और ना ही उसके पति को, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करने से पहले इन दोनों की बात सुननी होगी, तभी जाकर हम आगे फैसला कर सकते हैं कि अरुणिमा को उसके साथ भेजना है या नहीं। पर तभी वहीं पर अरुणिमा की आवाज आती है, उसने इतनी जोर जोर से दरवाजा पीटा कि तो वहीं पास में खड़ी एक मेड जाकर दरवाजा खोल देती है, और दरवाजा खुलते ही अरुणिमा भागते हुए नीचे हॉल की तरफ आती है, और जब उसने आस्तिक को सोफे पर बेहोश होते हुए देखा तो वो एकदम से घबरा जाती है। वो तेजी से आस्तिक के पास आती है और उसके सर के पास बैठ जाती है। उसने आस्तिक का सिर अपनी गोद में रखा और उसे सहलाने लगती है। वो रो रही थी, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो हताशा से भरी हुई थी। उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें आस्तिक, आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, देखो तो तुम मुझे डरा रहे हो, प्लीज आंखें खोलो। लेकिन जब आस्तिक ने आंखें नहीं खोली तो अरुणिमा ने गुस्से में देव की तरफ देखते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे आस्तिक के ऊपर हाथ उठाने की? क्या किया है तुमने इसके साथ देव? अगर मेरे आस्तिक को कुछ हुआ ना तो याद रखना मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। लेकिन देव ने भी सख्ती से कहा, पागल मत बनो अरुणिमा, वो इंसान मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी और मेरी बेटी पर बंदूक तानकर खड़ा था, और तुम्हें लगता है मैं इसे ऐसे ही जाने देता? वो तो शुक्र करो कि मैंने इसे जान से नहीं मारा, वरना उसने जो किया है ना उसके बदले में इसकी जान भी ले सकता था। और तुम शुक्र करो कि मैंने अपने आदमियों को यहां से वापस भेज दिया और उन्हें एक्शन ना लेने के लिए कहा,
क्योंकि अगर मैंने ऐसा ना किया होता ना, तो तुम अपने पूरे परिवार के साथ इस वक्त शमशान घाट में होते और किसी चिता में जल रहे होते। एकदम से आस्तिक की आवाज ने वहां के माहौल को गंभीर कर दिया था और सब हैरानी से आस्तिक को देख रहे थे। आस्तिक ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखकर कहा, जब सर पर हाथ फेर ही रही हो तो थोड़ा सर की मसाज भी कर दो, इसके आदमी ने इतनी जोर से मारा कि सर में अभी तक दर्द है। अरुणिमा एकदम से आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक अरुणिमा की गोद से उठ जाता है और सोफे पर आराम से बैठ जाता है। उसने अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए उबासी ली और थकी हुई आवाज में कहा, साला क्या क्या करना पड़ता है अपनी ही बीबी से मिलने के लिए।